चौथा अध्याय और ये प्रसिद्ध श्लोक इसका 18वां भाग आज बुधवार के कार्यक्रम में जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को तत्त्वतः जानता है वह शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की दिव्यता जिसके ये पांच पहलू और इन पांच पहलू में जो वर्णन हो रहा है कि भगवान को कैसे प्राप्त किया जाए, जिसमें हम 12वें और अंतिम मुद्दे पर हैं, हाउ मच डू वी वांट नेम फेम रिकॉग्निशन अटेंशन फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर कृष्णा। तो दो प्रकार के कार्य, टू टाइप्स ऑफ एक्शन, रिएक्शन एंड रिस्पॉन्सिव एक्शन। एन इनसाइड कंटेंट इज वीकर देन द आउटसाइड एनवायरनमेंट, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। Inside content is stronger than the outside environment, that is called response. तो हमारे वैदिक ग्रंथ हमें बाहर से और अंदर से सशक्त बनाते हैं। तो बाहर से जो वातावरण है वो अनुकूल कैसा होना चाहिए और आंतरिक रूप से हम जो उपदेश हमारे शास्त्र में दिए गए हैं उन उपदेशों का पालन हम कैसे करें। तो ये उदाहरण हमने लिया था कि एक तेज धार वाली तलवार जो कि एक मयान में रखी जाती है, उसी प्रकार से जो वैदिक ज्ञान है वो तलवार है और जो वातावरण है उसे पालन करने का अनुकूल वातावरण वो उस मयान के समान है। तो हम इस मुद्दे पर हैं पिछले कुछ बुधवारों से कि जो आधुनिक संस्कृति है और जो हमारी वैदिक संस्कृति है इन दोनों में कितना विरोधाभास है सिद्धांत पर और उन सिद्धांतों के प्रकटीकरण पर कितना विरोधाभास दिखता है। तो हमने कुछ मुद्दे लिए थे, सबसे पहले कि जो आधुनिक समाज है उसके अंदर अनावश्यक चीजें, उसका उत्पादन और अनावश्यक जीवन, उसका पालन, इसका प्रचार। तो जब हम अनावश्यक जीवन, अननेसेसरी लाइफस्टाइल को अपनाते हैं तो धीरे धीरे अनावश्यक जो कल्चर है वो भी हमारे अंदर आने लगता है। तो फिर संबंधों में, रिश्तों में, हमारी आदतों में, सोच विचार, हर कुछ धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, अननेसेसरी एंड यूजफुल, सॉरी यूजलेस, यूजलेस एंड अननेसेसरी। हमने ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा लिया कि जब वैदिक संस्कृति के अनुसार ये बताया जाता है कि कौन से समय पर स्त्री और पुरुष को संबंध स्थापित करना चाहिए, यहां पर हम शारीरिक संबंध की बात नहीं कर रहे, हम वैवाहिक संबंध में कब वो जुड़ते हैं। और पाश्चात्य संस्कृति क्या है, कि स्त्री और पुरुष जब तक शारीरिक रूप से न मिलें, तब तक उनके अस्तित्व का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अब देखिए, एक तरफ है वहां पर ये प्रेगनेंसी, पिछली बार हमने कुछ वीडियोस दिखाए थे टीन प्रेगनेंसी, और फिर वो क्या रहा है, क्योंकि उसको वो रोक नहीं पा रहे इसलिए अबॉर्शन को लीगलाइज कर दो, या फिर कॉन्ट्रासेप्शन उसको बहुत इजीली अवेलेबल करा दो। तो देखो सॉल्यूशंस क्या है उनके पास, ये किस प्रकार का सॉल्यूशन हुआ कि यदि मेरे आंख में मोतियाबिंद है तो आंख निकाल दे, ये उस प्रकार का सॉल्यूशन है ना, आंख ही नहीं रहेगी तो फिर मोतियाबिंद कहां से बनेगा। और दूसरी तरफ मैंने वहां पर एक जो जिसको आप कहोगे हिपोक्रेसी या ढकोसला, एक नमूना मैं आपको देता हूं उसका। तो एक तरफ है अबॉर्शन लीगलाइज्ड है, उसको वो लोग मर्डर नहीं बोलते, है क्या वो, एक शिशु को मारना, हमारे संस्कृति के अनुसार वो जीव है, वो बढ़ रहा है, वो जीवित है, परंतु उनके अनुसार वो केवल टिश्यू है, इसलिए उसको उस प्रकार से वो लोग टर्म्स भी देते हैं, टिश्यू रिमूवल। तो वहां उसको लीगलाइज कर दिया है, वो ऑथोराइज्ड है, वो आप दिन दहाड़े सब कुछ कर सकते हो। तो एक वहां पर मैं जब गया था कुछ 10 साल पहले, तो एक इंडियन दंपति न्यूजर्सी में रहने वाले, वो मुझे बता रहे थे कि उनकी शादी हुई और उनका छोटा सा कुछ महीनों का बच्चा, दोनों वहां पर पति पत्नी काम करने के लिए रोज निकलते, तो सुबह का समय वो छोटा सा बच्चा उनका उन्होंने पालने में रख रखा था, और जो पति है वो नहा रहा था और जो पत्नी है वो किचन में नाश्ता बना रही थी और बच्चा सोया हुआ था पालने में। हुआ क्या कि दोनों व्यस्त थे, आवाज के बीच में उन्हें समझ में नहीं आया, उन्हें सुनाई नहीं दिया, वो जो बच्चा है वो पालने से नीचे गिर गया, ज्यादा ऊंचा पालना नहीं था, तब बच्चा रोने लगा, उसके छोटी सी उंगली पर चोट लगी, तो डॉक्टर के पास ले गए उसको। तो वहां पर डॉक्टर ने पूछा कि ये चोट कैसे लगी, तो उन्होंने बता दिया कि ऐसे ऐसे वो पालने में था, हम लोग मैं किचन में थी, ये नहा रहे थे और हमने जब आकर देखा तो ये रो रहा था, पालने के बाहर था। तो डॉक्टर ने पूछा, डॉक्टर ने फिर जो भी कुछ मरम पट्टी लगा दी, दवाई देकर भेज दिया। आधे घंटे में वो अपने बच्चे को घर ला रहे हैं, वहां कि जो पुलिस है, कुछ एक अलग प्रकार की पुलिस, जो बच्चों या सोशल सिक्योरिटी टाइप की पुलिस, वो उनके घर पर पहुंचती और कहती है कि हमें आपका बच्चा ले जाना है। उन्होंने बोला, भाई क्यों, क्या क्या बात होगी, आप अभी अभी डॉक्टर से होकर आए हो और डॉक्टर ने हमें रिपोर्ट दी है कि ये जो कपल हैं ये बच्चा नहीं संभाल पा रहे, ये ट्रेंड पेरेंट्स नहीं है। तो उन्होंने देखा बच्चे को चोट लगी, ये डॉक्टर के पास जाकर आए, आपने जो भी कुछ कहा वो रिकॉर्डेड है, प्रूफ है हमारे पास, बच्चा हम ले जा रहे, यू आर नॉट केपेबल ऑफ हैंडलिंग योर चाइल्ड, ले गए जबरदस्ती, कुछ महीने का बच्चा है वो, ले गए उनके आंखों के सामने, जो भी अब होगा कोर्ट में होगा। अब वो लोग दौड़ धूप उनकी लग गई कोर्ट में, कोर्ट में जा रहे हैं, कोर्ट में अब उनको प्रूव करना है कि वो काबिल माता पिता हैं। कैसे प्रूव करेंगे? तो इसने क्या किया कि अपने पिताजी को बुलाया इंडिया से और पिताजी को कोर्ट में ले गया कि भाई इन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है, इनको हैंड ओवर कर दो, मैं तो वन पीस में बड़ा हुआ हूं, ये तो जानते होंगे मैं आपके सामने खड़ा हूं, प्रूफ है ये मेरे पिता हैं। नहीं नहीं नहीं, ये फाइनेंशियली डिपेंडेंट है आपके ऊपर। तो हां, वहां अमेरिका में एक फॉस्टर होम होता है, फॉस्टर होम, तो फॉस्टर होम में ले गए। फॉस्टर होम मतलब सौतेला घर, लिटरल हिंदी मीनिंग अगर आप समझना चाहो तो जैसे फॉस्टर पेरेंट्स होते हैं, फॉस्टर माँ, फॉस्टर पिताजी, ऐसा। तो फॉस्टर होम मतलब सौतेला घर। तो फॉस्टर होम में ले गए और फिर वो कह रहे हैं कि नहीं, आपके पिताजी फाइनेंशियली आप पर डिपेंडेंट है, नहीं मिलेगा आपको। तो फिर उन्होंने रीजन दिया कि भाई ये माँ का दूध पी रहा है ये बच्चा, माँ के दूध के बिना ये मर जाएगा। नहीं, हमारे पास उसका सब्स्टिट्यूट है, वो हम दे देंगे, हमारे फॉस्टर होम में माँ के दूध का सब्स्टिट्यूट है, वो हम पिलाते रहेंगे। तो आप बताइए, अब हम कैसे अपने आप को प्रूव करें? तो आपको एक पेरेंटिंग कोर्स करना पड़ेगा, हमारे द्वारा सर्टिफाइड पेरेंटिंग कोर्स करना पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट जब आपको मिलेगा, कितना लंबा कोर्स होगा? 6 महीने का वो कोर्स है। 6 महीने का वो कोर्स जब तक आप नहीं करेंगे, आपको आपका बच्चा नहीं मिलेगा। वो पास होना है कोर्स में आपको। सोचिए इंडिया में अगर ऐसा केस होता, पालने से बच्चा गिर। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक तरफ तो बच्चे का थोड़ा सा यहां पर उंगली में थोड़ी सी चोट लगी तो उसके लिए इतना बड़ा बवाल, कितना बड़ा बवाल, पूरा वो सोशल सिक्योरिटी सिस्टम आ गया, बच्चे को ले गया फॉस्टर होम के अंदर और एक साल तक बच्चे को नहीं दे रहे हैं, कोर्ट कचहरी ये सब कुछ, इतना सब कुछ। और दूसरी तरफ लीगली पूरे बच्चे को जान से मार रहे हैं, वो तुम्हारा जायज है, अबॉर्शन वो उसको तुम मर्डर कैसे बोल सकते हो? जैसे एक व्यक्ति मेरे साथ कुछ साल पहले ही अबॉर्शन के ऊपर डिस्कस कर रहा था कि कैसे आप कह सकते हो कि, तो मैंने उनको एक किस्सा बताया कि एक बार एक महिला डॉक्टर के पास गई अबॉर्शन कराने, तो डॉक्टर ने देखा उसके हाथ में पहले से एक बच्चा था, तो डॉक्टर ने पूछा कि क्यों अबॉर्शन कराना चाहते हैं, कारण क्या है अबॉर्शन? तो इस महिला ने कहा कि मुझे बस एक बच्चा ही चाहिए और नहीं चाहिए, मुझे और बच्चे नहीं चाहिए। तो उसने कारण क्या दिया कि मुझे केवल एक बच्चा चाहिए और नहीं चाहिए, इसलिए मैं अबॉर्शन करा रही हूं। तो डॉक्टर ने कहा, तो अभी आपके पेट में बच्चा है आप, ये तो मानती है ना, प्रेग्नेंट? हाँ। अच्छा मुझे बताइए, ये जो बच्चा आपने गोद में ले रखा है, ये बच्चा आपके अनुसार एकदम परफेक्ट है? नहीं नहीं, बहुत रोता है ये, वो मस्ती इतनी करता है, उसके अंदर खामियां, तो चलो इसको मार देते हैं, एक ही बच्चा चाहिए ना आपको और ये तो अभी तक परफेक्ट हुआ नहीं आपका, तो चलो इसको मार देते हैं, वो तो वैसे भी पैदा होने वाला आने वाला है ना, वो तो बच्चा। ये क्या बोल रहे थे? वो उसको, उस महिला को बहुत अपराधजनक लगा, ऑफेंसिव, हाउ कैन यू से समथिंग। तो डॉक्टर ने कहा, यू आर सेइंग, आई एम नॉट सेइंग, तुम्हारे लिए ये जो तुम्हारे गोद में है वो बच्चा तुम्हारा जीवित, और जो तुम्हारे गर्भ में है वो क्या है? वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो जीवित नहीं है। आपको समझ में आ रहा? नहीं? थोड़ा भाई भी दिख रहे हैं आप लोग। सो लुक एट दी हिपोक्रेसी। और इंडिया में भी आजकल सब कुछ ये लीगलाइज्ड कर हम सोच रहे हैं कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। फिर हमने इसके विषय में काफी चर्चा की, तो आज हम ये पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अर्थशास्त्र वर्सेस अर्थव्यवस्था। क्या अंतर है दोनों में? आप कहोगे भाई दोनों में अर्थ ये शब्द इस्तेमाल किया गया, क्या अंतर है अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था? इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं आज के युग में? क्या बोलते हैं इकोनॉमी आजकल? क्या बोलते हैं? अर्थव्यवस्था। व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय व्यवस्था? अरेंजमेंट। व्यवस्था मतलब अरेंजमेंट। तो जहां पर इकोनॉमी का केवल अरेंजमेंट हुआ है, क्या हुआ? अरेंजमेंट हुआ है। जैसे कि बुधवार के कार्यक्रम में आप लोगों के बैठने का अरेंजमेंट हुआ, उसको क्या कहेंगे? व्यवस्था। तो आप लोग बैठ गए, उसके बाद में कुछ हुआ ही नहीं, बैठे आप लोग 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, तो कोई आपको पूछे कि बुधवार का कार्यक्रम कैसा था? व्यवस्था बैठने की आज कंफर्टेबल एकदम, ऐसे सब सीट्स लगाई गई थी कि बिल्कुल भी कोई किसी को टच नहीं हो रहा था, कोई सर टेक के सो नहीं रहा था। हाँ, व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हाँ, पंखे भी एकदम सही स्पीड पे चल रहे थे। और क्या है? व्यवस्था बहुत अच्छी, बड़ा अच्छा प्रसाद खिलाया उन्होंने। हाँ, बाद में सब लाइन में, एकदम एक लाइन में, कोई लाइन तोड़ा नहीं, पूरा मेरे को जो मेरे को चाहिए था मेरे को 2 बार मिला। व्यवस्था एकदम बराबर थी। अरे तो अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है अभी आपको? तो हम इस मुद्दे को एक अलग प्रकार से समझने की कोशिश करेंगे। तो अर्थशास्त्र जो है वो किस चीज को सपोर्ट करता है? सपोर्ट्स मोक्ष। और अर्थव्यवस्था आजकल की जो है, इट सपोर्ट्स बंधन, मोर बॉन्डेज। धर्म अर्थ काम मोक्ष, क्या कहते हैं? धर्मार्थ काम और मोक्ष। तो ये जो चार पुरुषार्थ जिसको बताया गया हमारे शास्त्र में, ये चार पुरुषार्थ का अर्थ क्या है? कि धर्म जो है वो हमें मोक्ष तक ले जाए। हाँ, और उस धर्म का पालन करने के लिए आपको अर्थ जो है उसकी जरूरत है। तो अर्थ और काम, क्योंकि अर्थ से फिर काम, जो हमारी कामनाएं हैं वो अर्थ से हम पूरा करेंगे। क्यों? क्योंकि उन कामनाओं को पूरा कर हम भौतिक और आध्यात्मिक को बैलेंस कर रख पाएंगे। तो भौतिक और आध्यात्मिक को बैलेंस करने के लिए हमें अर्थ की जरूरत है। और ये सब कुछ बैलेंस किस लिए होना चाहिए? ताकि धर्म का पालन हो। और धर्म का पालन किस लिए हो? ताकि अंततः मोक्ष। इसलिए कौटिल्य उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा। सुना होगा ना आपने कौटिल्य का अर्थशास्त्र? कौन थे कौटिल्य? चाणक्य पंडित। तो अब अर्थ व्यवस्था अरेंजमेंट यहां पर जो हम देख रहे हैं कि वो इकोनॉमिक अरेंजमेंट्स हुए हैं। तो एक उदाहरण से मैं समझाना चाहूंगा कि जो हमें हमारी वैदिक संस्कृति में जो अर्थशास्त्र दिया गया, इसलिए शास्त्र कहा गया है कि उसका कनेक्शन शास्त्र के साथ है, और शास्त्र हमें इस संसार से मुक्ति दिलाने के लिए, इसलिए जो भी कुछ उसके अंदर है वो हमें मोक्ष प्राप्ति के लिए। तो एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि हाल ही में एक डिस्कशन हो रहा था मेरा, तो उस डिस्कशन में ये एक प्रश्न उठा कि जो आजकल की अर्थव्यवस्था है, यदि हम मान लो कि कुछ करना बंद कर दें, जैसे कि लोग कहते हैं कि अभी तुम मांसाहार नहीं करते तो फिर जो जितने अभी जैसे ये महाराष्ट्र में हो गया ना गोहत्या बंद, तो बहुत से लोगों का ये प्रश्न था कि गोहत्या बंद हो गई तो कितने लोग बेरोजगार हो गए, है ना, कितने लोग बेरोजगार हो गए, इतने लोग बेरोजगार हो गए और फिर बाद में भुखमरी बढ़ेगी ये वो, इससे अच्छा जो कुछ उनके लिए उनके रोजगार के लिए जो ये अर्थव्यवस्था की गई थी वो अच्छी थी या आप जो कह रहे हो वो अच्छा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि आधुनिक अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की है। ये देखिए, अब यहां पर मैं जेल का उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को कि आपने देखा होगा यहां नासिक में बड़ा सेंट्रल जेल है, बहुत पुराना है, बड़े बड़े सेंट्रल जेल होते हैं, आप जाओ पूना के साइड वहां पर वो येरवड़ा जेल बहुत बड़ा जेल है, तिहार बहुत बड़ा जेल है, ऐसे बड़े बड़े जेल। तो आप देखो कि एक जेल के अंदर वहां पर मैनेजमेंट चल रहा है, और ये बड़े बड़े जेल में बड़ा बड़ा मैनेजमेंट चलता है। किस प्रकार का मैनेजमेंट कि अभी सैकड़ों कैदी है उधर, तो उन कैदियों के भरण पोषण के लिए वहां पर सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, है कि नहीं। अब उनको एंगेज करके रखना है क्योंकि वो दिन भर वहां पर बंद है, और उनको एंगेज कर नहीं रखेंगे तो आपस में लड़ मरेंगे एक दूसरे के साथ, क्योंकि पहले से ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, सीधा साधा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उनका, तो वो लोग उनको एंगेज करते हैं। और उनको एंगेज किस प्रकार से करते हैं, अलग अलग तरीके से। आप देखो जेल के अंदर वो लोग कोई लंबे समय के लिए अंदर बंद है, आजीवन कारावास, कोई अगर 14 साल इस प्रकार से बंद, तो वो लोग को अलग अलग कार्यों में लगाते हैं। जैसे आप देखो कि वो लोग पढ़ाई लिखाई वहां पर अगर कोई अगर थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा है तो वो दूसरों को पढ़ाता है जो कम पढ़े लिखे कैदी, ये सब अंदर ही चल रहा है, जेल के अंदर चल रहा है सब। आप देखो वहां पर ये सब जेल की फोटोज है, क्या कर रहे हैं ये लोग, हैंडलूम का काम कर। तो कई बार आप देखोगे कि वहां पर जेल में वो लोग ये सब उत्पादन करते हैं, हैंडलूम या हैंडीक्राफ्ट या फिर ना मटके वगैरह इत्यादि वो सब बना के, और फिर वो बाहर उसको बेचा जा रहा है। तो अभी मान लो कि सरकार ने सोचा कि भाई यहां की इकोनॉमी को बढ़ाना है, किसकी इकोनॉमी हो रही ना, अभी जेल की इकोनॉमी हो रही है, वहां से पैसों का आयात निर्यात हो रहा है, तो जेल की इकोनॉमी को बढ़ाना कैसे, अभी कैदी जितने ज्यादा होंगे, है ना, तो चलो कैदियों को बढ़ाओ, क्योंकि जितने ज्यादा कैदी होंगे उतना ज्यादा जेल की इकोनॉमी बढ़ेगी। अभी शास्त्रों के अनुसार ये भौतिक संसार है क्या जेल, हम लोग कौन है फिर, बड़े ईमानदार हैं आप लोग तो ये संसार पूरा जेल, और जेल के अंदर हम लोग सब, कुछ ने ये बिजनेस चालू किया, तो अभी मतलब सोचो कि जेल के अंदर कोई 3-4 कैदी मिलकर बिजनेस चालू करें, चलो हम लोग अभी हैंडलूम का बिजनेस चालू कर रहे हैं, वो लोग अंदर हैंडलूम का बिजनेस चालू कर रहे हैं, उन्होंने जो भी पॉकेट मनी जो लेकर आए थे दस साल पहले सब लोग 50-50 रुपए डाले, उन्होंने फिर कपड़ा बुना, वहां से वो कपड़ा बनाकर वो बाहर बेच रहे हैं, उसका 100 रुपए बना, फिर बाद में 500 बना, 1000 बना, भाई उनका स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, कहां है कहां लेकिन अंदर है। ऐसे ही बहुत लोगों ने मिलकर वहां पर अलग अलग बिजनेस चालू किए, और फिर फाइनली जो प्रिजन अथॉरिटी है उन्होंने देखा कि भाई ये तो बहुत अच्छा इकोनॉमी यहां पर चल रहा है, तो ये इसको थोड़ा हम और सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं, किसको, जेल को और कैदियों के निवास स्थान को इत्यादि को और सोफिस्टिकेटेड बनाते। तो उन्होंने जेल के अंदर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं अंदर लागू कराना शुरू किया। तो इसको मैं एक टर्म देता हूं, सक्सेस इन जेल। हाँ, अभी जेल के अंदर वो लोग स्पोर्ट्स भी होता है उनका, हाँ, कबड्डी हुआ, खो खो हुआ, रनिंग हुआ, जो भी कुछ, फुटबॉल हुआ, वो सब कैदी आपस में खेलते हो, तो उसमें से कोई एक टीम जीत गई फुटबॉल, हाँ, दो कैदियों के बीच में, हाँ, नासिक के कैदी, मुंबई के कैदी, दोनों के बीच में मैच हुआ, नासिक की टीम जीत गई, गोल्ड मेडल मिला। हाँ, उसमें से जो सब लोग जीते, बाद में वो रिहा हुए, हो सकता है कि आगे चल के वो रिहा हुए, जॉब के लिए गए, तो जाके जॉब में वो फाइल में क्या लगा रहा है, सर्टिफिकेट, कि मैं फुटबॉल टीम में जीता था। कौन सी फुटबॉल टीम भाई? हाँ, यरवड़ा जेल की फुटबॉल टीम का मैं कैप्टन था। तो वो कितना उसका क्रेडेंशियल माना जाएगा, समझ में आ रहा है आपको? सेंट्रल जेल के फुटबॉल टीम का मैं कैप्टन था, अरे आपको सर्टिफिकेट है। तो ये जो अर्थव्यवस्था या सक्सेस इन दिस मटेरियल वर्ल्ड, जैसे आप लोग हंस रहे हो ना, वैसे ही जिन्होंने अर्थशास्त्र हमें दिया है ना, वो हमारी इकोनॉमी को देख के और हमारे सक्सेस को देख के ऐसे हंस रहे हैं। देखो, ये भौतिक संसार के कैदी कोई ओलंपिक्स में जीत रहा है ना, हम लोग अरे ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल लेकर आया, कोई ना क्रिकेट टीम जीत गई आईपीएल में, ये वो सब हो क्या रहा है, जेल के कैदी जीत रहे हैं और उसमें जश्न मना रहे हैं। ये देखिए, अभी यहां पर ये क्या दिख रहा है आपको, ऑब्वियसली आप बोलोगे जेल ही है, ये जेल है। आपको लग रहा होगा कि कोई 5-स्टार होटल का नया प्लान दिखा रहे हैं प्रभु जी शायद, हा? तो ये है 5-स्टार जेल इन ऑस्ट्रिया। अब इसके अंदर देखिए अरेंजमेंट्स क्या क्या उन्होंने कर रखे हैं। ये पूरा स्लाइड शो देखने के बाद आपकी इच्छा हो जाएगी शायद। ये उनके अंदर का वो सेल जिसको बोलते हैं सेल, हाँ, ये अरेंजमेंट देखो कितना अच्छे हैं अंदर, हाँ? ये जेल का जिम्नेजियम है, हाँ? सब फ्री है बाय द वे, फ्री है, एंट्रेंस भी फ्री है। नासिक में आप जाओ, क्या है वो तलवरकर गोल्ड जिम वगैरह में जाओ, हाँ, कितना फीस भरना पड़ता, देखो कितना आलीशान जिम है, कसरत करो अंदर बैठ के आराम से, खेलने के लिए देखो ये सारी चीजें, टीवी है, ये सारे अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे ये बैठे हुए हैं एकदम आराम से। तो अगर मैं ऊपर लिखता नहीं ये क्या है, हाँ, तो आपको तो लगता है कि भाई बहुत अच्छा कोई अरेंजमेंट हो रहा है ये तो, और मैं कहता है कि सब कुछ फ्री है, अगर मैं ये सब बताता है फोटोज दिखा के कहता कि सब कुछ फ्री है आप फ्री में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ? और फिर मैं कहता है कि ये जगह क्या है, तो दिखने में बाहर से दिखने में क्या दिख रहा है कि सब कुछ कितना चकाचौन है, आलिशान है, लेकिन ये ऐश्वर्य ये सब कुछ किसके अंदर है ये जानना जरूरी है। वेयर इज इट, तो इसलिए और उसका कनेक्शन क्या है, हमें वो कहां पर ले जा रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है. एट द एंड ऑफ द डे वो लोग बाधित हैं, बंधन में. तो यदि ये अर्थव्यवस्था हमें और बांध रही है, तो ये अर्थव्यवस्था हमारे हित के लिए नहीं है. इसलिए हम, हालांकि ये कौटिल्य का अर्थशास्त्र बहुत ही डिटेल्ड और डीप में है, कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो हमारी बुद्धि को समझ में आए उसमें से कुछ पॉइंट्स आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा. सबसे पहले हमारे अर्थशास्त्र में कहा गया है कि जो प्रोडक्शन हो किसी भी चीज का, वो प्रोडक्शन लोकल कंजम्पशन के लिए ही होना चाहिए. थोड़ा बच्चों को देख, लोकल कंजम्पशन के लिए ही होना चाहिए. अब ये एक थोड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए. देखिए, अभी पाश्चात्य देश में ये जो मॉल का कल्चर है, जो अभी इंडिया में भी इतना आ गया है, मॉल का कल्चर, इतने बड़े बड़े मॉल्स खुल गए हैं, तो ये जो मॉल का कल्चर है ये पाश्चात्य देश में इतना क्यों है और हमें क्यों इसकी जरूरत नहीं है, मैं समझाने की कोशिश आपको करूंगा. अब देखिए, वहां पर जो मैं इतना ट्रैवल करता हूं, कुछ साल पहले जब मैं यूरोप में गया था, एक कॉरपोरेट वर्कशॉप ट्रिप पर गया था मैं, तो वहां पर मैंने देखा ये बड़े बड़े मॉल्स वहां पर, और वहां का जो कल्चर वो क्या है कि वहां पर वो देश ऐसे हैं कि जो उनकी जरूरत है, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें, वो वहां पर प्रोड्यूस नहीं कर सकते. जैसे कि यूके में, यूके में जो उनकी रोजमर्रा की जरूरत की चीजें वो वहां पर वो उगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो जगह ऐसी है, इसलिए उनको कहीं और से उसको लाना पड़ता है. तो वहां के रास्तों पर मैंने देखा कि यदि दो कारें जा रही हैं तो दो कारों के बाद बड़ा बड़ा वो ट्रक जाता है, ट्रेलर उसको कहते हैं, इतने बड़े बड़े वो ट्रेलर होते हैं, जैसे कि वो ट्रेन की तरह इतने लंबे लंबे वो ट्रेलर होते हैं, तो हर दो कार के बाद वो एक निकलता है. तो होता क्या है, जैसे कि गेहूं है, तो गेहूं कहीं दूर उग रहा है, तो उस गेहूं को वो लोग ट्रांसपोर्ट करते हैं बहुत दूर किसी एक फैक्ट्री में जहां पर उसका आटा बनता है. अभी देखिए, हम लोग इंडिया में उसकी जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि घर घर में पहले आटे की चक्की थी, है ना. अभी भी आप जाओ तो जहां पर भी कोई रेसिडेंशियल एरिया है वहां पर एक कोई आटे की चक्की खोल ले, तो वहां पर ऐसा क्या है कि नहीं, वहां पर ऐसा कोई आप ना गेहूं लेके घूमते फिरो कहीं चक्की है, अमेरिका यूके में कोई आपको आटे की चक्की नहीं मिले. तो क्या होता है कि गेहूं जहां पर प्रोड्यूस होता है तो वो गेहूं को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो लोग बहुत दूर जहां पर आटा बनता है, वो अलग फैक्ट्री आटे बनने की. फिर आटा बन गया, फिर वहां से वो ट्रांसपोर्ट होता है जहां पर उस आटे का ब्रेड बनता है, वो अलग फैक्ट्री, वो 100-200 मील दूर, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन वहां होता है, फिर वहां से वो फिर आता है रिटेल मार्केट में या ये मॉल्स में, ठीक है. तो इतना सब कुछ घुमा फिरा के फिर वो मॉल्स में आता है जहां पर लोग रह रहे हैं, और वहां पर भी उनको जाने के लिए उनको कार चाहिए, तो फिर उसका फ्यूल और इत्यादि. तो ये सब कुछ वहां का जो कल्चर है, क्योंकि वहां पर सब कुछ भी लोकली उगता नहीं ज्यादा, इसलिए उनको एक यदि वो पाव या रोटी खानी है तो इतना अरेंजमेंट उनको करना पड़ा. तो मैंने वहां पर एक जर्मन व्यक्ति था, तो उसको मैंने पूछा कि आप बताओ आपके देश में क्या आम उगता है, आम? तो उसने कहा नहीं. मैंने पूछा चीकू उगता है, बोला नहीं. गन्ना उगता है, बोला नहीं. मैंने पूछा पालक उगता है, मेथी उगती है, बोला नहीं. कुछ भी ऐसी चीजें नहीं उगती जो कि इमीडिएटली उनके लिए पौष्टिक हो, ऐसी कुछ भी चीज वहां पर नहीं उगती. क्योंकि वो वातावरण वहां का ऐसा है, इसलिए उनको ये सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं। और हम लोग क्या, और वहां पर मैंने पूछा कि एक मॉल इतनी सारी बिजली लगाए हुए रहता है, तो मैंने पूछा कि ये जो एक मॉल इतनी बिजली लगाए हुए है, इसका एक दिन का कंजम्पशन उस पूरे मॉल का, और आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितने बड़े बड़े ये मॉल होते, कि एक दिन का उनका कंजम्पशन 7000 से ज्यादा घरेलू कंजम्पशन से भी ज्यादा है, 7000 घरों के घरेलू कंजम्पशन से ज्यादा। मतलब एक दिन वो मॉल जो लाइट चला रहा है वो 7000 घरों की बिजली के इक्विवेलेंट है। तो मैंने पूछा पानी बताइए आप, तो बोला कि पानी एक दिन का जो पानी वहां पर वो लोग इस्तेमाल करते हैं उस मॉल में, वो एक व्यक्ति के पानी के कंजम्पशन के 300 गुना ज्यादा, एक व्यक्ति के उतना उनके पानी का कंजम्पशन। तो ये जो वहां पर इन्होंने, और फिर अब आप देखो कि भारत के अंदर वही चीज वॉलमार्ट जो इतने सालों से इंडिया में आने का प्रयास कर रहा है, अब वॉलमार्ट जैसा ये बड़ा जो मॉल है, पता नहीं आ गया शायद यहां नासिक में, अभी तक नहीं आ पा। तो ये जो वॉलमार्ट, कुछ साल पहले मुझे पता लगा कि ये वॉलमार्ट का जो एनुअल सेल है वो हमारे इंडिया के एनुअल बजट से भी ज्यादा है, एक वॉलमार्ट कंपनी का। हमारा इंडिया का एनुअल बजट उस समय कुछ 5 लाख करोड़ और वॉलमार्ट का एनुअल सेल 11 लाख करोड़ साल का। तो अभी हो क्या रहा है कि इंडिया में जो इतने मॉल्स आ रहे हैं, तो यहां पर पहले से सेंट्रलाइजेशन का इकोनॉमी नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन। वहां पर क्या है, सब कुछ सेंट्रलाइज कर दो, यहां पर क्योंकि सब लोकली अवेलेबल है, हर राज्य में आप जाओ वहां पर उनको वहां के खाने के लिए फल है, अन्न है, तरकारी है, सब कुछ वहां पर, दूध इत्यादि सब कुछ हर राज्य में लोकली अवेलेबल है। परंतु अब इस कल्चर के वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे एडवर्टाइज करते हैं। आलू यदि 8 रुपए किलो है, पता नहीं मुझे कितना पता, एक अंदाजा, यदि आलू 8 रुपए किलो है तो वो लोग एडवर्टाइज करेंगे कि मॉल के अंदर कि हम आपको 8 रुपए किलो आलू और 2 आलू फ्री उसके साथ। तो वो जो मेंटालिटी, वो क्या देखेगा, अरे भाई मैं बाहर से जाके खरीदूं तो मुझे 2 आलू कम मिलेंगे, यहां पे 2 आलू ज्यादा मिलेंगे, तो वो मॉल में जाता है। हाँ, 8 रुपए तो वैसे ही देने, 2 आलू ज्यादा मिलेंगे, हाँ 2 आलू पराठे ज्यादा खा लूंगा। तो अब देखिए, मैंने वहां पर देखा कि एक बॉम्बे के एक मॉल में वो लोग शर्ट बेच रहे हैं, 1100 रुपए का एक शर्ट। तो 1100 रुपए का एक शर्ट खरीदो उसके साथ एक फ्री मिलेगा। तो मैंने उनको पूछा कि ठीक है आप 1100 रुपए का 2 शर्ट दे रहे हो ना, मतलब टेक्निकली क्या हुआ, 1100 रुपए के 2 शर्ट दे रहे हैं। आप 1100 रुपए का एक शर्ट खरीदो आपको एक शर्ट फ्री मिलेगा। तो मैंने कहा मैं 550 रुपए देता हूं, मुझे एक शर्ट दो ना। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। अभी गणित आप लगाओ तो गणित तो वही है, लेकिन नहीं, उनके गणित में फिट नहीं होता, क्योंकि वो जो फ्री में दे रहे हैं उसका क्वालिटी और जो 1100 रुपए का दे रहे हैं उसका क्वालिटी, तो हमको क्या लगता है कि हमें फ्री में मिल रहा है, फ्री में खाली पोछा का कपड़ा है सिला हुआ। तो ये जो धीरे धीरे यहां पर, अब देखो कि जब हम ये मॉल का कल्चर इंडिया के अंदर इतना सब देख रहे हैं, तो उसके उसके रिपरकशंस क्या है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या है, कि उसके साथ ऐसा नहीं होता है, उसके साथ हमें उनकी जो संस्कृति है वो भी अपनानी पड़ेगी। अभी देखो ये जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है जैसे कोक और पेप्सी, इनका आपस में कोई कंपटीशन नहीं है। हमको लग रहा होगा, दिख रहा होगा कि इनका दोनों में कंपटीशन है, नहीं। कोक और पेप्सी का कंपटीशन किससे है? भारत के नींबू पानी से। भारत के गन्ने के रस से कोक और पेप्सी का। तो आपस में उनकी सुलह क्या है कि भाई जो भी नफा नुकसान हमारा होगा, हम लोग आपस में विल स्टैंड फॉर ईच अदर। जैसे केलॉग्स कंपनी आपने सुना होगा, केलॉग्स कंपनी जो इस ब्रेकफास्ट सीरियल, ये केलॉग्स कंपनी, इन्होंने देखा कि इतनी आबादी भारत में और भारत के जो पूरी आबादी है, ये सुबह का नाश्ता ये लोग पकाकर खाते है ना। तो केलॉग्स कंपनी के लिए कंपटीशन में कौन थे? जो घर में दलिया बनाने वाली औरतें, खिचड़ी बनाने वाली औरतें, पोहा उपमा पराठे गरम गरम जो ब्रेकफास्ट है वो बनाने वाले, ये कंपटीशन था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम भारत के ब्रेकफास्ट हैबिट्स को चेंज करें, ठंडा ब्रेकफास्ट खिलाएंगे इनको। तो पाश्चात्य देश में क्या होता है, ठंडा दूध निकाला फ्रिज से, उस केलॉग्स का सीरियल डाला एक बोल में, दूध डाला, उसको मिक्स किया, खाया, भागा, ये उनका नाश्ता। तो उन्होंने डिसाइड किया कि भाई इंडिया के हम ब्रेकफास्ट हैबिट्स चेंज कर दें तो फिर इतना बड़ा कस्टमर का ग्रुप मिल जाएगा। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन होता क्या था कि मैंने देखा, मैं अभी यूके में मैं जब था तो मैंने देखा कि अपने वहां के जो भारतीय हैं, वो अंदर डीएनए है, अभी तक उनके अंदर भारतीय डीएनए है। तो उधर देखा मैंने कि वो केलॉग्स, एक वाटी के अंदर उन्होंने केलॉग्स का तो बनाया और उसके साथ आलू पराठा भी खा रहे हैं और दोनों चल रहे हैं। तो मैंने पूछा, आप ये आलू पराठा क्यों खा रहे? अरे ये इसमें से क्या होने वाला है? ये तो क्या मुंह दिखाइएगा, छूकर निकल जाएगा। तो बेसिकली क्या हुआ? अच्छा, तो अब इसके बीच में हुआ क्या कि जो केलॉग्स कंपनी नहीं कर पाई इंडिया के अंदर, इतना ज्यादा अपना मार्केट नहीं कर पाई, क्योंकि यहां पर चाहे कितना भी आप वो केलॉग्स का अलग अलग निकालो कि इसके अंदर इतने न्यूट्रिशन है, इसके अंदर ये है, वो है, ये विटामिन है, ये है, सब कुछ एडवर्टाइजमेंट कर लो, फाइनली वो जब नाश्ते के टेबल पर बैठेगा तो वो यही पूछेगा, ये पराठे कहाँ है, वो पराठे लाओ, क्या ये? तो वो इतना चली नहीं वो कंपनी। तो आलू पराठा और केलॉग्स के बीच में, मतलब कोई ऐसी चीज जो गर्म भी हो और इंडियन भी ना हो, तो मैगी। कौन सी कंपनी आई? ये मैगी आई बीच। अब आप सो जानते हैं पूरा कच्चा चिट्ठा उसका कि क्या निकला है उसका। तो वो बीच में आया और वो बहुत पॉपुलर हो गए बच्चों के अंदर, क्यों? बच्चों को ऐसे दिखा रहे हैं कि छोटी भूख, तुम्हारी छोटी भूख के लिए छोटा नाश्ता, और कोई बोला मेरे बड़ी भूख के लिए इसमें वो सब्जी डाल दो, ये डाल दो, उसको बड़ी भूख कर दो, तुम्हारे बड़ा नाश्ता हो जाएगा तुम्हारा। तो इस प्रकार से वो लोग ने उसको मार्केट किया। तो अब क्या है कि ये सारी चीजें जब आपको अगर लेनी है तो इन इन सब के साथ साथ वो लोग क्या करते हैं कि एक एक आइटम के साथ उसका कनेक्शन रखते हैं। अगर ये खरीदोगे तो उसके साथ ये भी लेना पड़ेगा, कि अगर कोई चाइनीज बनाना चाहता है तो उसके साथ चार पांच वो सॉस चाहिए। ऐसे ही खाली आप जीरा का तड़का नहीं मार सकते उसको। तो हो सकता है कोई मार भी ले। तो हो क्या है, हम लोग भारत भारतीय वो जुगाड़ू हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कोथमीर की चटनी बनाते हैं, मैगी को उबाल लिया और मिक्स कर दिया कोथमीर की चटनी के साथ, कि अगर वो पैकेट के अंदर गड़बड़ है तो पैकेट फेंक दो, अपनी चटनी बना के उसमें मिक्स करके खाओ। उनका बिजनेस किसके फाउंडेशन पर बढ़ रहा है? आध्यात्मिक क्रियाएं करने के फाउंडेशन पर बढ़ रहा है। तो उनका और जो उसको यूज कर रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं और जो कंज्यूम कर रहे हैं, दोनों का स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो रहा है। और आजकल की अर्थव्यवस्था क्या है, जैसे मैं ये उदाहरण पहले भी दे चुका हूं कि यहां महाराष्ट्र में क्या हुआ कि एक्सेस शुगर प्रोडक्शन किसके लिए, यही कोक पेप्सी के लिए एक्सेस शुगर प्रोडक्शन। तो जो रिफाइंड शुगर और रिफाइंड शुगर का जो रेसिड्यू होता है, मोलासेस जिसको बोलते हैं, वो इतना जब, क्योंकि इतना शुगर प्रोडक्शन हुआ तो वो जो बच गया तो उसको यूज कैसे करो, दारू बनाओ उसकी, फेंको क्यों उसको, तो उस मोलासेस को उसके दारू बनाओ, दारू इतनी बन गई तो उसको मार्केट करो, जब लोग ज्यादा दारू पीने लगे तो बीमार, उनका लिवर खराब होने लगा, तो उसके लिए फिर अस्पताल और खोलो, अस्पताल जब और खोल दिए तो उसके डॉक्टर्स चाहिए अस्पताल में, तो फिर मेडिकल स्कूल्स और खोलो, और फिर हम कह रहे हैं कि कितने लोगों को हम रोजगार दे रहे हैं, हाँ कॉलेज खुले हैं, अस्पताल खुले हैं, ये लिकर शॉप्स खुले हैं, और फाइनली एंड में हो क्या रहा है, वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की वजह से बीमारी बढ़ रही है, बंधन बढ़ रहा है, लोगों की जो बुरी आदतें हैं वो बढ़ रही है। तो मैं आपको ये एक इंटरेस्टिंग, मेरा एक ऑब्जर्वेशन, मैंने जब मैं यूरोप गया था तो मैंने एक ऑब्जर्वेशन मेरे एक प्रेजेंटेशन में वहां पर उनको दिखाया था कि कोई मूवी थिएटर में जाता है तो होता ना इंटरवल में वो लोग सब एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई ये खा लो वो खा लो, हाँ स्पेशली ये चीज पॉपकॉर्न। तब देखो कि मार्केटिंग ट्रिक्स उनकी कैसी होती है, पहले उनके पास दो वैरायटी हुआ करती थी, एक स्मॉल पॉपकॉर्न, बकेट बोलते हैं आजकल तो उसको, बाल्टी, हिंदी का ट्रांसलेशन क्या है, पॉपकॉर्न की बाल्टी, इस प्रकार से एडवर्टाइज करते हैं पॉपकॉर्न बकेट। तो पहले स्मॉल और लार्ज ये दो हुआ करते थे, तो उन्होंने देखा कि लार्ज कोई खरीद नहीं रहा है, क्योंकि लार्ज उनको बहुत वो नाम सुनते ही, तो वो लोग जब एडवर्टाइज करते थे वुड यू लाइक टू हैव लार्ज, तो लोग मना करते हैं लार्ज, इतना लार्ज क्या खाएंगे, इंटरवेल हो गया, पिक्चर वैसे भी बोरिंग है, जाना है घर पे जल्दी, तो वो लोग क्या स्मॉल लेते थे, स्मॉल लेते थे, ठीक जरूरत पड़ी तो और ले लेंगे, स्मॉल लेंगे। तो अब देखिए इन्होंने क्या ट्रिक करी कि इनका लार्ज, इनको क्या करना है, इनका टारगेट क्या है, हमारे को हमारा लार्ज बेचना है, बकेट पॉपकॉर्न का बकेट बड़ा वाला वो बेचना है। तो इन्होंने स्मॉल और लार्ज के बीच में मीडियम लाया, है ना। अब ये जो मीडियम शब्द है, हर समय मीडियम शब्द हमारे ह्यूमन साइकी के अंदर क्या एक इमेज क्रिएट करता है ना, बैलेंस्ड है ना, मीडियम है, मीडियम है। कोई पूछे पाव भाजी कैसी चाहिए, तीखी चाहिए फीकी चाहिए, मीडियम 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 है ना, वो जो मीडियम बोला वाला, मीडियम मतलब बैलेंस है, मीडियम ठीक रहेगा, ज्यादा फीकी भी नहीं रहेगी, मीडियम। तो उन्होंने क्या किया कि स्मॉल और लार्ज के बीच में मीडियम घुसा दिया, हाँ। तो अब देखो इसके रेट्स कैसे, एडवर्टाइज कैसे करते हैं कि अगर छोटा पॉपकॉर्न, छोटी बाल्टी, हाँ 20 रुपए, मीडियम का उन्होंने रखा 25 और लार्ज का रखा 28। अब उनको बेचना लार्ज ही है तो लोग एडवर्टाइज कैसे करते हैं, जब कोई काउंटर पे आता है, ये एक्चुअली मैंने देखा है वहां पे, मेरे को उन्होंने दिखाया कि कैसे होता है। तो कोई काउंटर पे आता है वहां पर पॉपकॉर्न खरीदने के लिए, तो वो लोग एडवर्टाइज करके रखते हैं, तो फिर वो जो व्यक्ति बेच रहा है वो कहता है कि 3 रुपए में आपको लार्ज मिल रहा है, उसको क्या लगता है, अरे 3 रुपए एक्स्ट्रा देने में मेरे को लार्ज मिल रहा है, हाँ चलो ले लो भाई, बच भी जाए तो घर ले जाऊंगा, हाँ कल खा लूंगा। सो दे आर प्लेइंग विथ अवर साइकोलॉजी, उनको लार्ज को बेचने के लिए करना क्या पड़ा, कोई भी मीडियम नहीं ले रहा था, फिर उन्होंने देखा 90% ऑफ द कस्टमर्स वर ओनली बाइंग लार्ज, व्हाई, बिकॉज द रेट्स वर एडवर्टाइज लाइक दिस, सो स्मॉल इज 20, इफ मीडियम इज 25, ओनली 3 रुपीज मोर यू आर गेटिंग द डबल। तो क्या लगता है उनको, अरे 3 रुपए बस एक्स्ट्रा देने में डबल मिल रहा है मेरे को, ला ला ला। कौटिल्य के अनुसार क्या है ये, कि इसमें सबसे पहले जब प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन की मेंटालिटी चीटिंग है, तो फिर कंज्यूमर क्या करता है, जब उसको समझ में आ रहा है कि मुझे चीट किया गया है, तो फिर वो चोरी करना शुरू करता है, वो भी चीट करना अलग अलग प्रकार से, वो किसी और को चीट करता है। इसलिए कौटिल्य के अनुसार, इफ यू बिकम द विक्टिम यू मेक समवन एल्स एज द विक्टिम, इफ कंज्यूमर थिंक्स दैट आई एम द विक्टिम देन आई विल मेक समवन एल्स ऑल्सो विक्टिम। एक और मैं आपको चीज बताऊंगा, आपने नोटिस भी किया होगा, पता नहीं किया है कि नहीं, आपने अक्सर प्राइस टैग्स देखे होंगे या प्राइस डिस्प्ले। यहां पर आप क्या देख रहे हो, किस प्रकार से डिस्प्ले किया गया, ये हमारे आय हमारी आंखों को धोखा देने के लिए ये प्राइस टैग्स होते हैं। अब तुरंत सबसे पहले जब आप देखते हो, कहीं दुकान पर जाते हो, प्राइस टैग देखते हो, क्या लिखा हुआ होता है, जैसे 49.99, आपको लगता है अरे 49 में मिल रहा है कितने में, 50 में हो एक्चुअली, कितने में हो, 50 में हो, लेकिन आंखों को क्या दिखता है, अरे 49 में है ना। कभी आपने सोचा ये हर बार 0.99 क्यों लगाते हैं लोग, जस्ट टू ट्रिक अवर आईज, और हमको लगता है कि मैं 40s में ले रहा हूं ये प्रोडक्ट, या जो भी 149 में ले रहा हूं, जैसे उसको 150 लगा दिया, अरे भाई 150 ज्यादा लगा, नहीं 149.9, अरे वो एक रुपया क्या है, मतलब कौन सा तुम साम्राज्य खड़ा कर लोगे, वो सॉरी एक पैसे में, एक रुपया नहीं, हाँ एक रुपया, सॉरी एक रुपया। तो ये एक उनका ट्रिक है। अच्छा, अब इतना ही काफी नहीं था कि आजकल जो अर्थव्यवस्था है, उस अर्थव्यवस्था की जो नींव है, जैसे मैंने कहा, वो नींव क्या है, टू समहाउ मार्केट एंड प्रोपोगेट यूजलेस एंड अननेसेसरी प्रोडक्ट्स, और उसके ऊपर बिजनेस करो। जितना ज्यादा वो प्रोडक्ट यूजलेस होगा, जितना ज्यादा अननेसेसरी होगा, लेकिन उसको आप इतने सोफेस्टिकेटेड तरीके से मार्केट करो कि उसके बिना उनको लगना चाहिए कि उनका जीवन निरर्थक है। इसके कुछ नमूने मैं आपको पेश करना चाहूंगा। सबसे पहले ये एक वीडियो आप देखिए, ये मैं वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं, जैसे यहां पे लिखा हुआ है वर्ल्ड्स कॉस्टलीस्ट कॉफी, और ये कॉफी कैसे बनती है, कॉफी के जो बीन्स होते हैं वो सबसे पहले एकदम फ्रेश कॉफी के बीन्स सबसे पहले हाथी को खिलाते हैं, और हाथी खाने के बाद जब टट्टी पास करता है तो उसको इकट्ठा कर वो लोग उसका ब्रू कॉफी बनाते हैं, और वो कॉफी सबसे ज्यादा टेस्टी कहते हैं वो लोग वो कॉफी। और आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि एक कप इस कॉफी का कॉस्ट अमेरिका में और ऐसे कंट्रीज में कितना है, 3000 रुपए का एक कप कॉफी, और बना किसे गया है, हाथी के टट्टी से। मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हाल ही में मैं कुछ ऐसे जो शहर में रहने वाले बच्चे, उनसे मैं बातें कर रहा था, तो उनको मैं गाय के बारे में बता रहा था, तो वो बोलते हैं कि शी डर्टी, क्या गौशाला में सब जगह वो गोबर है, शी 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 कर रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि ये बच्चे जो हमारी संस्कृति है गाय की, उसको ये लोग शीशी कर रहे हैं, और ये पाश्चात्य संस्कृति जहां पर ये लोग, मतलब सोचिए कि किसने कितना बेहुदा दिमाग लगाया होगा, हाँ अगर ये टर्म उसको यूज करें, कि कितना बेहुदा दिमाग लगाया ये चीज बनाने के लिए, और उसको ये लोग इस प्रकार से मार्केट कर रहे हैं कि भाई ये सोफिस्टिकेटेड है एकदम। क्या एक कप कॉफी $60 में, कितना $60 में, कुछ 2,500 से 3,000 रुपए का एक कप कॉफी है। तैयार है आप लोग? रेंदो देखा है?
As dawn stretches over an elephant sanctuary in northern Thailand, these handlers, or mahouts as they're known, take their elephants down to the river for a morning ritual. After a bath, this Canadian man prepares a special breakfast for them.
So what I have here, this is some coffee cherries.
What Blake Dinkin is trying to get them to eat is coffee beans. He's lived in Africa, Indonesia, and now Thailand, pursuing his dream. He's spent over a decade filled full of trials and errors, perfecting the technique.
When I first tried it, I thought it'd be really as simple as taking some beans, giving it to an elephant, out will come great coffee. It was horrible, couldn't drink it.
This elephant's digestive tract is the key part of a process of making the most expensive coffee in the world. John Roberts, who runs this elephant sanctuary, was skeptical at first.
My first reaction, I think, when I heard about it, was probably the same as yours. What am I going to do if the elephants ingest the coffee, if they ingest the caffeine? Am I going to have a lot of wild elephants on my hands, a lot of elephants with withdrawal symptoms and headaches and in a bad mood?
What convinced him were blood tests that showed caffeine doesn't release into their systems.
Oh, and there's a bean. It's the right one. Although she seems to have exhausted the beans on the last time, but there was a coffee bean in that one. Come on, Porn Lab.
And the bottom line, every deposit is worth several hundred dollars.
Old Blake pays by the kilo, so if I see a bean, I'm not immune to the coffee bean fever.
Dinkin is aiming to produce 270 kilos of coffee this year at well over $1,000 per kilo. It's pricey, but most important is the taste.
It's full-bodied, there's no bitterness, and there's lingering notes of chocolate.
Thank you!
Andrew Lee, CBC News, Golden Triangle, Thailand.
अब देखिए ये इनको हम कहते हैं कि ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं। अच्छा एक चीज आपने ऑब्जर्व की कि वो जो ये थाईलैंड में सब कुछ करते हैं लोग, क्योंकि वहां पे वो वहां के जो हाथी है वो बहुत फेमस है, तो वहां के पता नहीं वहां के हाथियों ने खाया हुआ जो कॉफी है उसका कुछ ज्यादा टेस्ट निकलता होगा शायद। तो जो थाईलैंड की जो आपने देखे होंगे वो मजदूर जो काम कर रहे थे, तो मैंने पता लगा है गूगल से कि वो जो मजदूर हैं वो नहीं पीते इसको। वो बिल्कुल टच भी नहीं करते। वो काम अगर करेंगे उसमें से निकाल के वो कॉफी और वो सब बनाएंगे, और वो बड़े बड़े उनके जो रिजॉर्ट्स हैं, फाइव स्टार होटल्स हैं, वहां पर वो कॉफी जाएगी और वहां पर बिकेंगे। लेकिन वो मजदूर हैं वो तो जानते हैं क्या ये। तो कई मजदूरों का इंटरव्यू लिया गया और वो लोग जैसे है कि हम लोग हंसने वाले, वैसे वो लोग इनपे हंसते हैं कि कैसे बेवकूफ लोग हैं, और इनको तो पैसे मिल रहे हैं तो इनको पैसों से मतलब है, लेकिन प्रोडक्शन क्या हो रहा है, समथिंग विच इज यूजलेस, समथिंग विच इज अननेसेसरी। अच्छा इतना ही नहीं, और मैं आपको बताऊं कि जो ये लोग कहते हैं ना कि क्या आप ये आपकी भारतीय संस्कृति में आप घरों में गोबर लगाते हो, आप ना आपके फर्श पर गोबर लगाते हो, हाँ इट इज सो डर्टी, ऐसे बोलते हैं लोग, इट इज सो डर्टी। अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ ऐसे क्रीम है जो पाश्चात्य देश की औरतें अपने चेहरे पे लेपती हैं। वो क्रीम, एक जो क्रीम है जो फेशियल जिससे वो करते हैं, एक नाइटिंगेल कर एक पक्षी है, हिंदी में पता नहीं नाइटिंगेल को क्या, नाइटिंगेल आप समझते होंगे, तो नाइटिंगेल पक्षी जो स्टूल पास करता है, करती है जो भी, उससे वो क्रीम बनती है। तो वो लोग जो चेहरे पे लगा रहे हैं वो नाइटिंगेल की टट्टी है, एज इट इज उसको लगा रहे हैं। और उसको ओ इतना कॉस्टली उसको इतने 10-10 गुना दामों में कि ये आपके चेहरे को ऐसा कर देगा वैसा कर देगा, और वो लगा के फिर कहते हैं कि आप लोग ये क्या गोबर लगा रहे हो आपके इसके ऊपर, अरे तूने मुंह पे क्या लगाया वो दिखाना पहले। तो ये एक और वीडियो है, 5 मोस्ट बिजार ब्यूटी ट्रीटमेंट्स। And
so pretty. Here are 5 of the most bizarre beauty treatments from around the world. Number 5. Bird poop facial. The facial is made out of nightingale poop and is known to act as an exfoliant, removing dead skin from the face and giving it a fresh, glowing look. It originated in Japan hundreds of years ago and was used by geishas to mend their skin, which often got damaged by the regular use of lead-based white makeup. Number 4. Bull semen hair mask. A few years ago, Harry's Saloon in London used bull semen for hair treatment. Bull semen is an extremely high source of protein, and its application supposedly led to beautiful, shiny, and bouncy hair that lasts for days. Number 3. Placenta facial. Yes, you heard that right. The facial is another fad in skincare. According to a Time report, dermatologist Dr. Harold Lancer offers a placenta facial that uses a protein derived from FDA-approved human placentas. Due to its anti-aging properties, the facial is particularly popular with many Hollywood celebrities. Number 2. Snake Venom Facial Cream. This product is made from synthetic snake venom and is created to replicate the effects of the real venom. The cream is said to immobilize facial muscles, reducing wrinkles over a period of time. Number 1. Snail Slime Face Cream. If you are looking for skin free of wrinkles, acne, and blemishes, look no further. Snail slime might be the answer to most of your skin woes. According to an NBC report, snail slime is a great source of proteins, removing dead cells and rejuvenating the skin.
आखिरी में बताया ना स्नेल स्लाइम, स्नेल स्नेल जानते हैं ना, तो वो जो नीचे म्यूकस छोड़ता है चलते 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 जो म्यूकस छोड़ता है, तो उसको कलेक्ट करते हैं। और एक ट्रीटमेंट है अमेरिका में जहां पर वो चेहरे के ऊपर ये सब को जिंदा स्नेल्स को छोड़ देते हैं औरतें, और वो स्नेल्स जो है चेहरे के ऊपर वो घूमते रहते हैं और अपना म्यूकस छोड़ते रहते हैं छोड़ते रहते छोड़ते रहते। और वो जो भी उसका महाप्रसाद है वो उनको लगता है कि तो ये बहुत कॉस्टली, इसलिए नंबर 1 उसको बताया गया है स्नेल स्लाइम। स्नेल स्लाइम क्या है? वो स्नेल के शरीर से निकला हुआ वो स्टिकी म्यूकस उसको चेहरे पे लेपते हैं और फिर कहते हैं ये क्या आप गाय का गोबर लगा रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कि अगर उन जानवरों को जाके पूछो, वो हाथी को पूछो कि भाई कितना कॉस्ट है तुम्हारे टट्टी का कॉस्ट कितना है अगर वो जो पक्षी है उसको पूछो, ये स्नेल को, इनको पूछो, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। और यहां पर जो भी मैं कह रहा हूं कि कितना बेहुदा इमेजिनेशन लगाकर कि इस चीज को इन्होंने क्या किया, इसको इकोनॉमी बनाया कि हाँ भाई इसके बलबूते पर हम कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों को उनकी व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो मॉडर्न इकोनॉमी ये है क्या, इट्स बेस्ड ऑन यूजलेस एंड अननेसेसरी, ये दो चीजें। तब देखिए इसमें अब इंडिया में हम आते हैं कि हाँ ये इस प्रकार से एडवर्टाइज किया जा रहा है कि फेयर एंड लवली आप लगाओ। और कितने मुझे बचपन से मैं देख रहा हूं कि बचपन से जो भी हमारे परिवार के वो मेरी कजिन सिस्टर्स वगैरह हो, दिन रात लेप 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 करके फेयर एंड लवली, कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो ये लोग देखो कैसे एडवर्टाइज कर रहे हैं कि मतलब अब सोचो कि बैरक ओबामा वो कभी देखता भी नहीं होगा फेयर एंड लवली को। तब ये फेयर एंड लवली है क्या, मतलब उसके अंदर आप देखो कि मेरा एक दोस्त था ट्रेनिंग के अंदर मद्रास का, तो वो मतलब अभी जैसे हम लोग जो भारतीय हैं, हम लोग क्या है, हम लोग सांवले हैं। एक हमारे अंदर एक तत्व है, उसको कहते हैं मेलेनिन। तो मेलेनिन की मात्रा जब ज्यादा हो जाती है तो डार्क होता है व्यक्ति कॉम्प्लेक्शन, और जब मेलेनिन की मात्रा बहुत कम होती है तो व्यक्ति एकदम गोरा चिट्टा दिखता है। तो जो वहां के लोग हैं, पाश्चात्य लोग हैं, उनके अंदर वो मेलेनिन की मात्रा कम है, और जो अफ्रीकी हैं उनके अंदर मेलेनिन की मात्रा बहुत ज्यादा है। हम भारतीय कौन है, बैलेंस्ड है, हम लोग मीडियम। नहीं, सही बात है, हम लोग बैलेंस्ड है। और कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बेसिस पे मैं कह रहा हूं कि वो लोग जो सांवले हैं, जिनके अंदर मेलेनिन की मात्रा बैलेंस्ड है, कैंसर, स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है उनके अंदर, और जिनके अंदर मेलेनिन की मात्रा इम्बैलेंस्ड है उनके अंदर कैंसर की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। तो मैं कुछ साल पहले मैं एक अपना मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम दे रहा था, तो वहां पे एक क्वेश्चन ये पूछा गया मुझे, क्वेश्चन पूछा गया कि आपके ये इंडिया में इतने लैंग्वेजेस, इतने कल्चर्स, हर राज्य में जाओ आप, नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, सब जगह पर इतनी संस्कृतियां, इतने लैंग्वेजेस, और आप लोग सब ये अलग अलग कॉम्प्लेक्शन के हैं, जैसे हम लोग ब्रिटिशर्स। उसने ये क्या कह रहा था, वो गर्व से कह रहा था कि हम लोग ब्रिटिशर्स, वी आर ऑल सेम स्किन, बट इन इंडिया कोई बहुत गोरा है, कोई बिना ऐसा है, कोई वैसा है। तो माइक के ऊपर मैंने उसको कहा, आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जो गधे होते हैं कि कलर के होते हैं? लेकिन जो घोड़े होते हैं वो अलग अलग कलर के होते हैं। तो समझ लो कि गधा कौन है, घोड़ा कौन है। तो मैंने उनको एक कहानी सुनाई कि जब भगवान सृष्टि कर रहे थे, तो भगवान ने सृष्टि के शुरुआत में मनुष्यों को जब बनाना चाहा, तो भगवान रोटी पका रहे थे, रोटी पका पका के उनको खिला रहे थे। तो जब भगवान ने रोटी पकाई और कच्ची निकली, और वो कच्ची रोटी जिन्होंने खाई वो अंग्रेज बने, और जब रोटी जली हुई निकली वो जिन्होंने खाई वो अफ्रीकी लोग बने, और जब तीसरी बार रोटी एकदम पक्का बैलेंस्ड पक्के निकली, उसको जिसने खाई उसमें से कौन निकले? तो अब देखिए कि ये जो इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा, ये फेयर एंड लवली का इतना, इतने सालों से ये जो कर रखे हैं लोग, तो ये जो मेरा मित्र, इसको मैंने कहा कि तुम्हें पता है, तुम मद्रास से हो, कि मद्रास हाई कोर्ट में फेयर एंड लवली के अगेंस्ट केस हुआ था। मद्रास हाई कोर्ट में केस हुआ था कि एक बंदा, वो 20 साल से फेयर एंड लवली उसको लगा रहा था, पता नहीं कितने किलो फेयर एंड लवली उसने थेप ली होगी अपने ऊपर, और कुछ नहीं हुआ। तो उसने फेयर एंड लवली के अगेंस्ट पे केस कर दिया, सारे उसके बिल रखे उसने 20 साल के, क्या क्या कितनी फेयर एंड लवली खरीद रखी उसने, सब लगे सब उसने। तो जज के सामने जब ये गया, मद्रास हाईकोर्ट में जब जज के सामने गया, तो जज कहता है कि मेरी बीवी का भी यही प्रॉब्लम है, पिछले 25 सालों से लगा रही है, मैं ही खरीद खरीद के दे रहा हूं उसको। तो फिर फेयर एंड लवली के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको मद्रास हाईकोर्ट में बुलाया गया और उनको पूछा कि भैया तुम क्या डालते हो उसके अंदर, जो तुम इतना दावे से बोल रहे हो कि गोरे हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे, क्या है इसके अंदर? आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने ओपनली कोर्ट में ये कबूल किया कि उस फेयर एंड लवली के अंदर वो सुअर के मांस की चर्बी का तेल डालते हैं। उसको कहते हैं इंग्लिश में पिग टैलो ऑयल, और उसके लिए हमारे भारतीय जो गोरा होना चाहते हैं वो क्या क्या दे रहे हैं उसके लिए, सोचो कि एक 20 ग्राम की जो ट्यूब आती है वो 40 रुपए की, 50 ग्राम की 80 रुपए की, एक किलो 1600 रुपए की, तो 1600 रुपए में यदि बादाम काजू ले लो तो ज्यादा काम आएंगे। सुअर की मांस का तेल लगाना, उससे अच्छा बादाम काजू खाओ 1600 रुपए में। और फिर ये फेयर एंड लवली का ये लोग एडवर्टाइजमेंट कैसे करते हैं देखिए, अब देखो यहां पर कोई इसको विश्वास करेगा? सिर्फ एक रात में गोरी त्वचा पाइए, मतलब हम लोग क्या अलीबाग से आए हैं? मतलब कितना ये लोग किस किस हद तक। अब एक मेरे को इंटरेस्टिंग, ये मराठी में है, माणूस वाइट नसतो फेर एंड लवली त्याला वाइट करते। अच्छा इतना ही नहीं, इसके अंदर एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब ये ऐसी चीजें ऐसे प्रोडक्ट्स, मैं तो खाली एक प्रोडक्ट लिया हूं, क्या कैटेगरी में है वो? यूजलेस एंड अननेसेसरी, ये कैटेगरी। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि फेयर एंड लवली लगाने से अगर कोई गोरा होता तो चलो भैंस को 20 साल लगा के देखते। हाँ भैंस को लगाते 20 साल। वो भैंस भी हंसेगी हम पे। अच्छा अब इनका जो मार्केटिंग टेक्निक कैसे है? अच्छा ये काफी नहीं था तो फेयर एंड लवली तो स्त्रियां लगाती थी, तो अब जो पुरुष हैं उनके लिए नया क्रीम इमामी ने बाहर निकाला, फेयर एंड हैंडसम। तो फेयर एंड हैंडसम निकाला कि भाई स्त्रियां ही खाली गोरी क्यों हो, तुम काले क्यों रहो, तो तुम भी गोरे बनो। तो इसलिए अब उसके अंदर फिर ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी शाहरुख खान वगैरह, ये वो कभी उसको खोलता भी नहीं होगा, ट्यूब को देखता भी नहीं होगा, लेकिन एडवर्टाइजमेंट में उसको करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, है ना, तो उसमें वो दिखाएगा कि कैसे वो क्रीम लगा के वो कैसे शाहरुख खान बना है। और एडवर्टाइजमेंट में क्या दिखाएंगे, एक बेचारा खड़ा हुआ है कि मैं कब बनूंगा, उसको वो क्रीम देता है, तू ये बना, तू ये लगा, मेरे जैसा बन।
काश मैं भी शाहरुख होता।
जीना चाहते हो मेरी जिंदगी में?
इतना सब सहने के बाद भी है सर, काश मैं भी।
शाहरुख नहीं तो क्या, हैंडसम कोई भी बन सकता है। फेयर एंड हैंडसम यूज करो मेरी तरह, पर लड़कियों वाली क्रीम कभी नहीं।
इमामी फेयर एंड हैंडसम, खास मर्दों की सख्त त्वचा के लिए, इसका यूनिक 5 पावर फेयरनेस सिस्टम दे बेहतर गोरापन।
कहा ना, हैंडसम कोई भी बन सकता है। इमामी फेयर एंड हैंडसम, वर्ल्ड नंबर 1 फेयरनेस क्रीम फॉर मेन।
देखिए कि इस प्रकार के जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो क्या बताना चाह रहे हैं। जैसे हम वो पिछली बार स्टोरी ऑफ स्टफ आपको दिखाया, तो उसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे वो कह रही थी ना कि आपका हाल ठीक नहीं, आपकी खाल ठीक नहीं, आपकी चाल ठीक नहीं, कुछ भी आपका ठीक नहीं, लेकिन ये लगाने से, जैसे ये बोल रहा है कि उसको लगाने से वो सक्सेसफुल बन जाएगा, हाँ वो सेलिब्रिटी बन जाएगा, वो ये बन जाएगा, वो बन जाएगा। तो मतलब लोगों कि जो साइकोलॉजी है उसके साथ किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा है और लोग बेवकूफ बन भी रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि हाँ भाई अगर ये व्यक्ति अभी वो दोनों मिले हुए हैं, वो दोनों कुछ उनको लगाने की जरूरत नहीं है, और जो एंड कस्टमर हैं उसको लग रहा है कि मैं शाहरुख खान जैसा बन जाऊंगा, मैं जब इसको लगाऊंगा तो ये होगा वो होगा, मेरे ऐसे फेम बढ़ेंगे ये वो, और फिर वो 20 साल तक लगा रहा है अलग अलग आके जाके बोल के जा रहे हैं और वो लोग मर भी गए, कभी लगाया भी नहीं। सो देयर इज नथिंग फेयर इन दिस एंड देयर इज नथिंग हैंडसम इन दैट। अच्छा, इतना ही काफी नहीं था, कम से कम इसके अंदर तो हम ये कह सकते हैं कि ठीक है उनको इतनी छूट दे दो कि कम से कम उन्होंने क्रीम का एडवर्टाइजमेंट किया। अब एक एडवर्टाइजमेंट में आपको दिखाऊंगा कि कोई हद नहीं है किस प्रकार से हमारे साइकोलॉजी को बेवकूफ बनाया जाता है, जस्ट उनके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के अनुसार।
बेटे कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं।
पर माँ, हाँ? मेरी त्वचा। दीदी इंस्टेंट पैनर चाहिए तो ये लो।
ये
साधारण क्रीम असर दिखाए 5 दिनों में, पर बजाज CFL से पाइए बस 1 सेकंड में उजला गोरा रंग। बजाज CFL सब कुछ रोशन कर दे।
अब इसको क्या खो गया? मैं तो खाली एक ही लाइन कहूंगा, या तो वो ट्यूबलाइट है या हम ट्यूबलाइट। तो पॉइंट यहां पर देखिए, एक तरफ हम अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है समथिंग विच हैज सम वर्थ वैल्यू। अब ये सारी चीजें जिसके अंदर अर्थ तो छोड़ दीजिए, अनर्थ हो रहा है। अर्थ का उल्टा क्या है? अनर्थ हो रहा है। तो अनर्थ हो रहा है और उस अनर्थ के बलबूते पर यदि कोई अपना साम्राज्य खड़ा कर रहा है तो चारों ओर पूरे समाज में क्या कॉन्शियसनेस फैल रहा है? ये प्रकार का कॉन्शियसनेस, दिस इज व्हाट दे आर स्प्रेडिंग। और हमें लगता है कि हाँ भाई, कि इस प्रकार का मैन्युफैक्चरिंग या इस प्रकार का प्रोडक्ट, इसके अंदर कितने लोगों को रोजगार मिला। परंतु फाइनली आप देखो कि समाज जो परिवारों से बना हुआ है, या यदि हम ये कहें कि देश जो है समाजों से बना हुआ है, समाज परिवारों से बना हुआ है, परिवार जो है वो इंसानों से बने हुए हैं, हम इंसान जिनके अंदर भावनाएं हैं, हमारे अंदर इच्छाएं हैं, हमारे अंदर उसूल हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वैल्यूज हैं, ये सब कहां गए? ये सब की कोई कदर ना करते हुए बस, जैसे मैं पिछली बार कह रहा था, दीज मल्टीनेशनल कंपनीज आर सिंपली मेकिंग अस इनटू अ प्रोडक्ट। वी आर द प्रोडक्ट, वी आर नॉट द कस्टमर एनीमोर, वी आर बीइंग कंज्यूम्ड बिकॉज ऑफ दिस व्यवस्था। और ये व्यवस्था किसके लिए है? ये व्यवस्था किसी और के लिए है। तो इसलिए जब तक हम हमारे वातावरण को नहीं समझेंगे कि हम किस वातावरण में रह रहे हैं और उस वातावरण को हम क्या बना रहे हैं, तब तक जो वैदिक ज्ञान है वो वैदिक ज्ञान हमारे मस्तिष्क में घुसेगा ही नहीं। तो धीरे धीरे आजकल जो बच्चे जो हैं वो लोग हमारी वैदिक संस्कृति को पिछड़ा हुआ मानते हैं। जैसे मैंने कहा कि वाड़ा में बच्चों को, बंबई के बच्चों को जब लेकर गए गोविंद प्रभु, तो बोल रहे थे कि वो गाय को, गौशाला को और वहां पर गोबर को देखकर छी 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 कर रहे हैं। और वही जब एकदम सोफिस्टिकेटेड कंपनी के अंदर क्रीम बनाकर उनको जब दिया जाए कि ये ऐसी क्रीम है कि आपको एक दिन में सफेद बना देगी, ये कर देगी, वो कर देगी, ये कॉफी इसको पीजिए, ये कॉफी बड़े बड़े 5-स्टार होटल में बिक रही है 3,000 रुपए कप में, उसको जब पिएंगे और पता लगा कि वो है क्या, नहीं नहीं नहीं, अंग्रेज पीते हैं, अंग्रेज पीते हैं, उन्होंने पूरा साइंटिफिक स्टडी कर ही बनाया होगा ना, है ना, बनाया ना, देखा ना वीडियो आपने कि कहां से निकला है वो। लेकिन जब उसको एकदम सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो लोगों को लगता है कि हाँ भाई यही संस्कृति है, और हमारी भारतीय संस्कृति पिछड़ी हुई संस्कृति। तो इसलिए हम धीरे धीरे, ये मुद्दा अभी तक पूरा नहीं हुआ, इनफैक्ट एक और आपको वीडियो दिखाना था, अगली बार हम दिखाएंगे स्टोरी ऑफ कॉस्मेटिक्स, जैसे पिछली बार हमने आपको दिखाया था स्टोरी ऑफ स्टफ, तो अगली बार आपको हम दिखाएंगे कि कैसे ये जो अर्थव्यवस्था है, इस अर्थव्यवस्था, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र को व्यवस्था में परिणित किया किसने, अंग्रेजों ने, और वो कैसे किया, धीरे धीरे उन्होंने कैसे हमारे संस्कृति में आके एक एक हमारी संस्कृति के दीवार की एक एक ईंट निकालकर पूरी दीवार नीचे कर दी, वो हम आपको धीरे हमारे इस सेशंस में बताते जाएंगे। और न केवल हम ये चाहते हैं कि आप इसको समझो, बल्कि आप इसको अपने जीवन में पालन करो और फिर ये जागरूकता पैदा करो, ताकि जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता में, विशेष रूप से श्लोक में, कि मुझे तत्वतः जानो, ये श्लोक क्या है कि भगवान को तत्वतः जानना, भगवान की संस्कृति को तत्वतः जानना, यही हमारा एकमात्र उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।